السلام علیکم،
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کی سیاست پہ، میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد، ان کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا احتساب عدالت کے سامنے تحقیقات کے لیے پیشی ہونا تھی لیکن وہ نہیں جا پائے ہیں، اس کے کیا کہنا چاہیے کہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ دوسرا آج یہ کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے چیلنج کیا ہے کورٹ کے ان احکامات کو جس میں انہوں نے نیب کے اندر ریفرنسز فائل کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو بھی اپیئر ہونا پڑا نیب کے سامنے، اس پہ بات ہوگی۔ اور پاکستان کی سیاست کی جب بات ہوگی تو کراچی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف دھڑوں کے درمیان ممکنہ اتحاد، یہ بھی موضوع ہوگا۔ پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ وکلاء عدالتیں، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے جو تشدد، جو وائلنس ہمیں سامنے آیا ہے۔ اور تیسرا حصہ ہوگا صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے، وہ افغانستان کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کرنے جا رہی ہیں، کیا کہیں گے یہ حتمی طور پہ تب سامنے آ سکے گا، لیکن توقعات یہ ہیں کہ شاید اس میں ایک دباؤ کا سا پہلو ہو پاکستان کے لیے بھی۔ اور آخری حصہ کرکٹ سپورٹس، ورلڈ 11 سیریز پاکستان میں، اور بہت زیادہ توقعات اور امیدیں ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیناما کیس میں اور اس ورڈکٹ کے بعد نیب میں کچھ مقدمات بھجوائے گئے میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم، اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف، اور اس ریفرنس میں انہیں عدالت کے سامنے پیش ہونا تھا گزشتہ جمعے کو لاہور کے مقامی دفتر میں نیب کے، لیکن وہ وہاں پیش نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ جو تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اس پس منظر میں بہت سارے مبصرین کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کی اس بارے میں پلاننگ کیا ہے، ان کے وکلاء کیا سوچ رہے ہیں، اور جنرلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں اس سنس میں کہ اگر نیب کے سامنے پیشی نہ ہو تو گرفتاری تک کا بھی مرحلہ آ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں بات چیت کرنے کے لیے دانیال عزیز صاحب، فیڈرل منسٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر، اب نمائندگی کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر۔ دانیال صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے جوائن کیا ہے۔ جی دانیال صاحب، آپ کچھ بتائیں گے ہمارے لسنرز کو کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی حکمت عملی اس ریفرنس میں کیا ہے، جب وہ ریفرنسز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا انویسٹیگیشن کے لیے نیب نہیں جاتے ہیں۔
جی، اس میں جو نیب کا سمند ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس میں نہیں پیش ہوں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی فردر ڈیفینس نہیں ہے۔ خانہ پوری اصل حقیقت یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس میں کوئی کیس بن نہیں پایا ہے، اور اب ادھر ادھر یہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جائے، کوئی اور کو طریقہ کر لیں، کوئی ڈیلے کر لیں، کیونکہ جو والیوم 10 ہے اس میں جتنے بھی میوچل لیگل اسسٹنس انہوں نے مانگے تھے ان میں تو جوابات ہی نہیں آئے۔ جو جوابات آئے ان میں بیشتر ایسے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے تو کوئی شرطیں پوری نہیں کی میوچل لیگل اسسٹنس کی، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ کوئی رسپانس دینے کے قائل نہیں ہیں۔
صحیح،
تو اب یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی کی اپنی رپورٹ تھی اس میں تو انہوں نے کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں تھا۔ تو اب حقیقت یہ ہے کہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ میٹھا تھوڑا زیادہ ڈل گیا، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہضم کیسے کریں۔
لیکن دانیال صاحب، جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر کیس کمزور ہے نیب کے اندر تو پھر تو بہت آسان ہے کہ پہلی پیشی میں ہی فارغ ہو جائے گا، پھر تو پیش ہو جانا چاہیے تھا۔
لگ رہا یہی ہے، کیونکہ وہ جو ہائی سپریم کورٹ ہے وہ بھی شرما رہی تھی والیوم 10 دینے سے، تین مرتبہ نیب والوں کو مانگنی پڑی ہے، اور جیسے ہی ان کو ملی آبویسلی اس میں کچھ ڈیفیکٹس تھے، کیونکہ انہوں نے ایک نئی میوچل لیگل اسسٹنس سعودی عربیہ کو لکھ دی عزیزیہ اور عبیدیہ کے لیے۔ تو یہ جو کلمات تھے کہ جناب جے آئی ٹی نے بہت اعلیٰ کام کیے، بڑا الکمال کام کیا، تو پھر یہ کیوں ان کی غلطیوں کو صاف کرنا پڑ رہا نیب والوں کو؟ اور جب انہوں نے آرڈر کر دیا کہ آج جے آئی ٹی رپورٹ کے اوپر نیب ریفرنس فائل کر دیں، تو نیب کے بورڈ نے جب ان کے لا کے مطابق بیٹھ کے اس کا جائزہ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، ہم تو سیٹسفائیڈ ہی نہیں اس کو انویسٹیگیشن اسٹیج تک لے جانے کے لیے۔ اور جو اس وقت کے ہیرے تھے جس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو افسران تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ بزنس نہ ہی رکھے تو اچھا، وہ بھی نکل گئے کھل سکے اس میں سے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے جی؟ اپنا یہ بہت بڑا سوالیہ ہے کہ پاکستان میں کس انداز سے، خیال تو یہ تھا کہ یہ لائر موومنٹ کے بعد اور نواز شریف صاحب کے ایک اسٹینڈ لینے پہ جس سے عدلیہ بحال ہوئی کہ ہم ایک نئے راستے پہ چلیں گے۔
لیکن دانیال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب اگر آپ، جیسے آپ نے خود اس کا خدشہ ظاہر کیا ہے، بھلے آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو یک طرفہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے، اور یہی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے، سو پھر یک طرفہ فیصلہ آنے کی صورت میں،
یک तरफा फैसला बिल्कुल नहीं आएगा जी, क्योंकि ये पहले जमाली कोर्ट ने पूरा किया, उसमें भी सारे जवाब दिए गए, फिर खोसा कोर्ट ने पूरा किया, उसमें भी जवाब दिए गए, वहां भी कुछ नहीं बना, फिर जेआई टी बनाई गई, उसमें भी सारे जवाब दिए गए, उसके बाद भी कुछ नहीं गए। अब आखिरी दफा जो है नैब को कह रहे हैं कि नाब अब आप शुरू हो गए, आखिरकार ये तमाशा खत्म कर लूंगा। असल हकीकत तो ये है कि ये सियासी केस है, इसमें दम ही कोई नहीं है, सारे जो है इसको हॉट पोटेटो की तरह एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे हैं कि तुम जिम्मेदारी लो, तुम जिम्मेदारी लो।
अगर सियासी केस है दानियाल साहब, तो कौन उसको लॉन्च कर रहा है? गवर्नमेंट, सियासी हुकूमत है इस वक्त, आपकी अपनी हुकूमत है, खाकान अब्बासी साहब जिसको हेड कर रहे हैं।
तो भाई इतने खुदा के लिए इतने सादा ना बने, नैब एक आईनी अदारा है, अदलिया एक आईनी अदारा है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, इनके ऊपर हुकूमत का कोई बस नहीं चलता, ये पीटीआई की रखी हुई लाइनों की तरह आप सुना रहे हैं मुझे।
नहीं, मैं पीटीआई की लाइनें नहीं सुना रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सियासी हुकूमत है तो ये इदारे सियासी आपके, ये पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, आप ये कह रहे हैं?
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लीगली स्पीकिंग कोई तकाजा पूरा नहीं किया गया। जो एक स्कूल का जो सफाई करने वाला होता है ना, फराज जिसे कहते हैं, दर्जा कारण का मुलाजम, उसको भी अपील का राइट होता है, वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपना केस रखता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में उसको अपील मिलती है, मार्शल लॉ के दौर में भी अपील मिलता है। आपने से कलम एक वजीर आजम को फारिग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से जहाँ अपील का राइट ही नहीं है, और कह रहे हैं कि रिव्यू में जिसका अपना लिमिटेड स्कोप होता है आप यहाँ पर आके अपनी ट्राई कर ले, ये आखिरकार सिस्टम है जस्टिस का, और जहाँ केस बन नहीं पा रहा है उसके ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दिया। तो हमने जो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की है उसको जरा पढ़े तो सही, वो कोई मजाक है? इन्होंने तो बिल्कुल इतनी जल्दबाजी की है बेचारों ने कि ये खुद मुंह के बल गिर पड़े हैं सारे, इनको समझ नहीं आ रही कैसे संभाले इस चीज को।
वो तो है, लेकिन दानियाल साहब ये देखिए कि जब ये इवन सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना है, आप बजाते खुद आपने उसके ऊपर या आपकी क़यादत ने उसके ऊपर इत्तेफाक किया है, तो जब आप इत्तेफाक करें तो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आने के बाद ऑप्शन सिर्फ रिव्यू का बनता है, कहीं और अपील तो नहीं हो सकती?
सॉरी, ये आप गलत तरफ कर रहे हैं, बेंच के आगे हमारे दर्जनों कंप्लेंट्स हैं, यहाँ तक कि इसी बेंच में जेआईटी के ऊपर मजबूर होकर इंक्वायरी की ये मांग के ये ज्यादा हुई है।
अब हिकमत है, चलो मैं जरा आगे आ जाता हूँ, आप फरमाइएगा अब हिकमत अमली क्या होगी? जेआईटी हो गई, फैसला आ गया,
हमने हर स्टेज पे, मेरा जुमला मुकम्मल होने देती, हमने हर स्टेज पे पिटिशनें फाइल की है और बहुत सारी वो मानी गई है। उल्टा क्या हुआ कि उसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप तो बहुत गंदे हो गए पब्लिक में, क्योंकि हमारे से कुछ हो नहीं पा रहा, तो उन्होंने एक अलग जो है ना भरमार कर दी अपनी क्रॉस एलिगेशन की, उसमें भी सुखी हुई क्योंकि जो मीडिया की रिपोर्ट थी वो जेआईटी के बनने से पहले की दे दी उन्होंने, तो वो क्या कौन सा मीडिया सेल था जो उन्होंने कहा कि ये टेप रिकॉर्डिंग है हमारे पास, लेकिन जेआईटी के पास कौन सा टेप रिकॉर्डिंग का, वो सारा भांडा फूट गया, असल बात बाहर आ गई, वहां भी इनकी सुखी हुई। तो ये तो एक पहले दिन से जब ये व्हाट्सएप कॉलिंग गई है उस वक्त से हम कह रहे हैं कि ऑर्डर में कह रहे हैं कि महकमा नॉमिनेट करेगा, इधर से पता चल रहा है कि वहां जाके तोड़ मरोड़ के कान मरोड़ के तो लोग नॉमिनेट किए जा रहे हैं।
सही, ठीक दानियाल साहब, आप बुनियादी तौर पे फिर वापस उस प्रोसीडिंग और उस प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं, मैं थोड़ा आगे की बात करना चाह रहा था। मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब चूंकि ये फैसला हो चुका है, नवाज शरीफ साहब ने उस फैसले को कबूल किया है, वो मुस्ताफी हो गए हैं, हत्ता के पार्टी की सदारत से वो अलग हो गए हैं, लेकिन अब ये मामला तो नैब में है, क्या बिल्कुल नहीं जाएंगे? क्या सोचा क्या है, हिकमत अमली क्या है?
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस ऑर्डर के साथ सख्त इख्तलाफ है और उस सिलसिले में रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है, और उस रिव्यू पिटीशन से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सबको पता अगर वो रिव्यू पिटीशन आप पढ़ें तो वो खुद एक दास्तान है कि यहाँ पर हुआ क्या है, असल बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है कि ये 5-0 हुआ कैसे।
सही,
5 की रिपोर्टें जो हमें मिल रही है,
आप बता दीजिए कैसे हुआ 5-0, कैसे हुआ,
क्या हुआ, लेकिन कोई आदमी नोबडी सेलिंग टू बेल्ट क्या है?
सर हम आपको सुन रहे हैं, आप बताइए 5-0 कैसे हुआ, हम सुन रहे हैं आपको।
जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इधर जो जब जजेस के जो फैमिलीज हैं वो वीआईपी इंक्लोजर में तशरीफ ले आए और वहां पर ऊपर जैसे कि कुटिलो एक्सप्रेस खेलने की आवाजें आ रही थी, तो इतने सॉम्बर अफेयर में जबकि एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप जो कि पिटिशनर के पिटिशन में प्रेयर ही नहीं है कि आप कोई करें, एसजेडी का पहली दफा एजाज लाइसेंस साहब के जजमेंट में जिक्र हुआ, ना इमरान खान, ना शेख रशीद, ना जमात इस्लामी, किसी ने भी इसका जिक्र तक नहीं किया, और जो जीआईटी के पास है वो भी सोर्स रिपोर्ट्स हैं जो इनके अपने वकील ने कहा कि ये काबिले समायत नहीं अदालत में, और वो कंटेस्टेड फैक्ट था, ऐसे हमने नहीं माना ख्वाजा आरिफ साहब ने लिखा है, और इन्होंने जुडिशियल प्रिंसिपल जो एस्टैब्लिश किया था कि जो कंटेस्टेड फैक्ट है वो ट्रायल में जाएगा, उसको जानबूझ के ट्रायल में नहीं भेजा गया, और तोड़ मरोड़ के ब्लैक रॉक डिक्शनरी का एक जो पैसे लिए ही नहीं जो हमारे टैक्स के लिए सारी केस था, टैक्स चोरी का या पैसे छुपाने का। जो हमारा टैक्स लॉ का सेक्शन 12 है वो कहता है सिर्फ वो सैलरी मानी जाती है जो रिसीव होती है, और ऑर्डर खुद कह रहा है कि रिसीव नहीं हुई।
सही।
तो यानी निकाल रहे हैं, तो आप मुझे ये बात बताएं कि इसमें जो है आपको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है।
दानियाल साहब, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, लेकिन आपको बताता चलूं, यासीन आजाद साहब भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, एक कानूनी नुक्ता उनके सामने भी रखना चाहूंगा। लेकिन आपसे बिल्कुल ये सवाल है, जैसे आपके तहफ़ुज़ात जेन्युइन हो सकते हैं, सवालात में वजन हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये है, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर पेशी नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन में हम गए हैं लेकिन तवक्को नहीं है, अगर पेशी नहीं होगी तो गिरफ्तारी हो सकती है, बल्कि अगर नवाज शरीफ साहब की जगह कोई और आदमी होता तो गिरफ्तारी हो चुकी होती। सो क्या गिरफ्तारी तक के मरहले के लिए तैयार है?
मुझे एक बात बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बताएं, मुशर्रफ परवेज गिरफ्तार हुआ था या अस्पताल चला गया था? ये इमरान खान 3 साल से ये इश्तियारी है, 788 का एंटी टेररिज्म है, नेशनल एक्शन प्लान का दौर है, इसको खैर करवाई जाती है 12 दिनार की, इसका जलसा होता है इस्लामाबाद में, अथॉरिटीज को नहीं पता था कि ये कौन है। हमें तो कहते थे कि जनाब देखिए आपकी हुकूमत आप पकड़ लें, तो जब हफ्ते वाले जुमे वाले रोज हुकूमत खत्म हो गई थी तो इतवार को ये जलसा करता है और हुकूमत दोबारा बनती है तीसरे को, उस दिन किसकी हुकूमत की आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहे थे?
देखिए हम आपके इस सवाल पे तो बिल्कुल इत्तेफाक कर रहे हैं कि इमरान खान है, वो इश्तियारी हैं, गिरफ्तार होना चाहिए, कौन करे ये बाद में पता। मुशर्रफ साहब के पेशी के अर्थ
है अपने कमले को हाथ लगाते हुए बड़ी दर्द होती है, हाथ लड़क जाता है जब अपने कमले को हाथ लगाना पड़ता है।
चलो एक सेकंड आप हमारे साथ रहिएगा, यासीन आजाद साहब से पूछ लेते
हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि खागी तरीन एक माना हुआ चोर है, उसने ब्लैक मनी कमाया इनसाइडर ट्रेडिंग से और उसने पैसे वापस कर दिए, और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि यही तो सादे कमीन होने का सबूत है। इसके आगे मैं मुझे बताएं मैं क्या कहूँ, मुझे तो दिल करता है मैं पिस्तौल लेकर अपने सर में खुद ही मार लूं।
जी यासीन आजाद साहब, आप हमें आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। एक तो काइंडली ये बताइएगा कि अगर नैब में जिनके खिलाफ पिटीशन है या जिन्हें वहाँ पे इंक्वायरी के लिए इन्वेस्टिगेशंस के लिए पेश होना है, अगर वो नहीं होते तो नैब के लाज क्या हैं, क्या हो सकता है, एक बात। और दानियाल अजीज साहब का जो ये खासतौर पर जो आखिरी एतराज़ था, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि स्टेट के जो लाज हैं वो तो सब पे बराबर अप्लाई होने चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब या फैमिली के लोगों की गिरफ्तारी एंटिसपेट की जा रही है, सो फिर इमरान खान भी जो इश्तियारी हैं, काफ़ी अरसे से अदालतों से इश्तियारी करार पा चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो सकी है? और परवेज मुशर्रफ साहब साबिक आर्मी चीफ हैं, जब उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के थी तो फिर उनको रस्ते में से उठा के एक फौजी अस्पताल में लेके चला गया होता है।
सबसे पहली बात मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों में मैं खुद न्यूयॉर्क में था
जी,
और न्यूयॉर्क में भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जिस ग्राउंड पे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो इंतहाई वीक ग्राउंड है, और इस वीक ग्राउंड पे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए थी।
सही।
लेकिन चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस ग्राउंड पर उनको डिस्क्वालीफाई किया, जो मेरे नज़दीक इसलिए गलत है कि आर्टिकल 1843 जो है आइन का, वो किसी भी आदमी को अपील का राइट नहीं देता।
ठीक है।
और होना ये चाहिए कि जिस आर्टिकल आइन के आर्टिकल के तहत आप प्रोसीडिंग कर रहे हैं, अगर उसमें अपील का राइट नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप आर्टिकल 10A की वायलेशन कर रहे हैं। तो आर्टिकल 10A का मतलब ये हो गया कि आपने ड्यू प्रोसेस देना है, और जो अग्रीव पार्टी है उसको फुल अपॉर्चुनिटी देनी है टू डिफेंड द केस।
सही।
अब जब आर्टिकल 1843 में अपील का राइट कहीं भी मौजूद नहीं है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फॉल्स स्टेटमेंट के ग्राउंड पे आपने किसी को डिस्क्वालीफाई किया, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक वो फैसला जहनी तौर पे मैं एक्सेप्ट नहीं करता।
सही।
पर मैं ये कहता हूँ कि चूंकि
फैसला हो गया,
पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई, उन्होंने रिव्यू फाइल की, लेकिन जो इनकम टैक्स के हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि जो चीज आपने रिसीव नहीं की वो एसेट्स नहीं है।
ठीक है।
लिहाजा ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन लॉज के मुताबिक जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया और उस वक्त अगर आपने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया, तो प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि ये ओमिशन थी, वो डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन में किसी भी सूरत में नहीं आता।
सही। ठीक है। अच्छा लेकिन यासीन आजाद साहब, ये हम जरा उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से हट के अब जरा हम नए प्रोसिक्यूशन की तरफ आ रहे हैं, उसके उसके बारे में कहिएगा। अब उसमें
नेब के मतलब नेब के मतलब मैं ये कहूंगा कि नेब के केसेस का एक प्रोसीडिंग का तरीका कार है. पहले कॉल अप नोटिस होता है, कॉल अप ऑफ नोटिस के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जाके रेफरेंस फाइल होता है.
सही.
यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपने कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ को नेब को केस तो भेज दिया. नैब के कानून के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि आपने एक महीने के अंदर केस की प्रोसीडिंग को कंप्लीट करना है. वहाँ आप नैब को 6 महीने का टाइम दे रहे हैं कि 6 महीने के अंदर प्रोसीडिंग नैब को कंप्लीट करे.
सही.
दूसरी तरफ आपने जो जुमला अपने जजमेंट के अंदर दिया, चूंकि रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, उसमें आपने एक जुमले का इस्तेमाल किया कि आपको रेफरेंस फाइल करना है, ये नहीं कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है. तो मैं यहाँ चूंकि अनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट पहले था वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस पर इजहार शाल का हर आदमी को हक है. ये अलग बात है कि अब रिव्यू पेंडिंग है, तो जब ये सूरत हाल हुई आप खुद कहते हैं कि रेफरेंस फाइल करेंगे, तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम के पास क्या रास्ता है कि वो रिव्यू नहीं फाइल करेगी. और फिर पाकिस्तान की तारीख में आप ये देख रहे हैं कि उस इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जो नेब की टीम होगी
ठीक है,
उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जज
सुपरवाइज कर रहे हैं,
वो मॉनिटर करेगा. और इवन जो है नैब कोर्ट का जो जज है उसको भी वो मॉनिटर करेंगे.
ठीक है.
ऐसी सूरत हाल में मेरे नजदीक ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए, ये कहना कि आप जो नैब की प्रोसीडिंग करेंगे उसमें जो प्रोसीजर है जो नैब लॉ प्रोवाइड करता है आप उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते, आपको तो लॉ के मुताबिक प्रोसीड करना है.
सही है.
पर ये तमाम ग्राउंड मेरे ख्याल में जो एग्री पार्टी है उन्होंने रिव्यू पिटीशन के अंदर लिए हैं. मेरा कहना यह है कि रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, उसमें ग्राउंड्स हैं, लीगल ग्राउंड्स हैं. और मेरे नज़दीक मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई अपील की नहीं की जिसमें यह कहा हो कि ये रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने.
ठीक है.
मेरे नज़दीक चूंकि अपील का राइट इसमें नहीं था
तो रिव्यू पिटीशन का राइट था. और आप ये फरमा रहे हैं कि जब तक रिव्यू पिटीशन के ऊपर डिसीजन नहीं आता नैब जो है ना वो
कोर्ट को सुननी चाहिए.
ठीक है. और जब तक रिव्यू पिटीशन के ऊपर फैसला नहीं आता नैब को ये हियरिंग्स ये समाज ये इन्वेस्टिगेशन तहकीकात नहीं करनी चाहिए.
नहीं, दूसरा ये चूंकि इन्होंने स्टे भी मांगा है कि मीनवाइल जजमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए.
ठीक है.
तो बेहतर यही है कि उस रिव्यू पिटीशन को फौरी तौर पर लगाया जाए और अगर ये पेश नहीं होते तो
चलो ये तो हो गया, उसमें स्पेसिफिक हो गया. लेकिन यासीन साहब मुझे ये बताइए, अगर इस वक्त जरा नवाज शरीफ साहब को अगर तस्वीर उनकी जेन से निकाल के अगर ये बताएं कि अगर नैब किसी को तहकीकात के लिए तलब करता है और पेश नहीं होता शख्स, सो नैब के लाज क्या कहते हैं उसके बारे में?
मैंने यही कहा ना कि पहले आपको इंक्वायरी करनी थी, इंक्वायरी करने के बाद आपको जाना चाहिए था इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन पे, और उसके बाद जो सूरतयाल होती उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं, गिरफ्तारी की भी बात कर सकते हैं. उनके पास लीगल राइट है प्री अरेस्ट बेल कराने का भी, वो राइट अवेल कर सकते हैं. लेकिन जब ये मामला वापस सुप्रीम कोर्ट चला गया
ठीक है,
तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा अरसा वेट कर लिया जाए और रिव्यू पिटीशन को पहले डिसाइड कर दिया जाए और बाद में प्रोसीडिंग हो तो मेरे नजदीक वो ज्यादा मुनासिब है. लेकिन चूंकि ये फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना है.
सही.
और मैं ये कहता हूँ कि जो आईनी पोजीशन है, चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई कोर्ट नहीं है
ठीक है,
उसके बाद आदमी कहाँ जाएगा? और पाकिस्तान की तारीख में आर्टिकल 184(3) में पहली दफा फॉल्स स्टेटमेंट के ग्राउंड पे आपने किसी को डिस्क्वालीफाई किया
जी.
तो ये ग्राउंड एक ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि उनको जो एग्री पार्टी है उनको फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए.
ठीक है.
आर्टिकल 10A की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, रिव्यू पिटीशन को आगामी बुनियादों पर सुनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को सुनना चाहिए. मेरा अपना पॉइंट ऑफ
जी. बेहद शुक्रिया आपका यासीन आजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. दानियल अजीज साहब आप हमारे साथ थे, आपके भी हम मशहूर हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. दुर्दाना नजम और आमिर लतीफ साहब हमें ज्वाइन करें, दोनों सीनियर साफी हैं, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर दोनों की नज़र है. आमिर लतीफ साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा पनामा हियरिंग समाप्त उसके बाद चीज़ें जिस तरह से अनफोल्ड हुई हैं, अब मामला जो है वो नैब के अंदर है और नैब में तहकीकात के लिए सवाल जवाब के लिए पेश होना था नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को, वो नहीं हुए, 2 दिन गुजर चुके हैं. आज फाइनेंस मिनिस्टर ने चैलेंज किया है कोर्ट ऑर्डर्स को नैब में जो फाइल किए गए रेफरेंसेज उसके अगेंस्ट. आपके ख्याल में क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर वो पेश नहीं होते हैं तो?
देखिए जैसे मैं अभी यासीन आजाद साहब की इख्तितामी गुफ्तगू सुन रहा था
जी,
तो वैसे तो आर्टिकल 190 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा सिर्फ आईजी को भी हुक्म दे सकती है और सेक्रेटरी दाखिला को भी हुक्म दे सकती है कि इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। मैं इसके दूसरे पहलू की तरफ आता हूँ। असल में नवाज शरीफ साहब जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो अपने आप को 1997, 98 और 99 में समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद वही वाली सुप्रीम कोर्ट है, कोई ऐसा मसला नहीं है और वो सारी चीजें जो है उनको अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि उनके खिलाफ कोई फैसला आ चुका है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो इस वक्त एक तो होती है ब्यूरोक्रेटिक लेबरेंस और एक होती है लीगल लेबरेंस जो है। तो अगर इस वक्त ये जो लीगल चीजें हैं उनको अपने वकला के जरिए ही डील करें और बहुत ज्यादा इस मामले को पॉलिटिसाइज ना करें।
ठीक है,
मेरा जो जाती आइडिया है सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ेगा इस सारी पॉलिटिकल एक्सरसाइज से। यानी वो जो कुछ उनके मुशीर उनको मशवरा दे रहे हैं और वो उसको पॉलिटिकल तरीके से ये कर रहे हैं और जो उनका जुमला मशहूर हो चुका है कि मुझे क्यों निकाला, अब उनको चाहिए कि वो जो अपनी रिव्यू पिटीशन है उसका इब्तिदा इसी जुमले से करवाएं और इसी जुमले से करवाएं ताकि जजेस के ऊपर भी ये आए कि वो इनको बताएं। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, जो यासीन आजाद साहब कह रहे थे अगर वो होते तो वो सुनते तो उनको भी मजा आता कि एक ही वकील को मैंने देखा कि जब वो एक ऐसे चैनल पे आए जब वो जो कि जरा हुकूमत मुखालिफ समझा जाता है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ में कलाबे मिला दिए, मतलब सबसे अजीम फैसला करार दे दिया और वो कानून के मुताबिक भी आईन के मुताबिक। दूसरे दिन ही मैंने उनको, बल्कि दूसरे दिन नहीं कुछ ही घंटों बाद उनको मैंने एक दूसरे चैनल पे देखा जो कि हुकूमत का हामी यानी नवाज शरीफ का हामी समझा जाता है।
ठीक है,
वहां उन्होंने बिल्कुल उलट बात की और वही वाली बात की जैसे यासीन आजाद साहब कर रहे थे। तो मैं आपको अर्ज करूं कि जितनी भी बातें हैं इनका कोई फायदा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका कोई असर नहीं होना। नवाज शरीफ के पास एक ही रास्ता है, टू सरेंडर बिफोर द लॉ। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिव्यू पिटीशन को कानून के मुताबिक डील करें, सियासत के मुताबिक ना करें, तो मुमकिन है उनको ये रिलीफ मिल जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में नैब के वो होने वो ना हो। अच्छा, मेरी राय इस पे भी वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों रखी है। देखिए नैब का क्या किरदार रहा है पिछले आप 9 सालों में देख लें और खासतौर पर पिछले 4 सालों में देख लें। यानी उसने हुकूमत के मुखालफीन को तो फिक्सअप किया है लेकिन उसने हुकूमत के ऊपर कोई केस नहीं बनाया। यानी राणा मशहूद जो इनके वजीर तालीम है पंजाब के, उनकी वीडियो सबके सामने वायरल हुई जिसमें वो रिश्वत मांग रहे हैं लेकिन ना नैब हरकत में आई, ना FIA हरकत में आई, कोई चीज हरकत में नहीं आई। तो जो सुप्रीम कोर्ट का मेरे लिहाज से, तो मैं तो इसको, यानी अगर आप मुझे 50-50 का चांस दें तो मैं कहता हूँ कि मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट
लेकिन
पे आँख हो।
लेकिन जो लॉ ऑफ जस्टिस है जी उसके मुताबिक फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को तमाम मुकदमात को सुपरवाइज करना होगा, सिर्फ नवाज शरीफ साहब के नहीं, फिर वो सिलेक्टिव जस्टिस की तरफ इशारा होता है। दुर्दाना नजम साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ हैं। दुर्दाना, बेहद शुक्रिया, आपका एनालिसिस लेना चाहूंगा इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है पैनामा से चलते चलते नैब इंक्वायरी और उसमें कहना चाहिए कि एबसेंस नवाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की।
जी हाँ, देखिए ये बड़ी मतलब पहले ऑब्वियसली वो कहते रहे कि हम कोर्ट रूल ऑफ लॉ और कोर्ट के जितने भी अहकाम होंगे उनको मानेंगे और उन्होंने जिस तरह से भी जैसे भी ऑब्वियसली उन्होंने किया वो पेश होते रहे JIT के सामने। लेकिन अब आकर उनको शायद ये एहसास हो गया है कि वो भी गलती की थी कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस उन्होंने शुरू करवाया था और आपने आपको एहतसाब के लिए पेश किया था। बल्कि अगर आप आज जो पिटिशन दायर किया है इसहाक डार ने, उसमें उस पिटिशन में उन्होंने कहा है कि ये तो झूठी मतलब एक नकली जाली किस्म की JIT बनी थी और इस जाली JIT के ऊपर ना तो रेफरेंस दायर हो सकता है और ना ही मैं इसका जवाब दे हूँ। तो जब उनके जहनों में, आपने हमने देखा भी था किस तरह से उनका एक खास ब्रिगेड जो है वो तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और तमाम लोग वो रोज जुडिशल अकेडमी के बाहर खड़े होकर किस तरह से लान तान करते थे और किस तरह से एक किस्म का आप मतलब डिसग्रेस कर रहे थे JIT को, क्योंकि उनको पता था कि किस किस्म का रिजल्ट और किस किस्म की जजमेंट आने वाली है।
सही।
तो ये एक ऑब्वियसली इन्होंने पेश भी नहीं हुए रेफरेंस में, उनके उनके मतलब उनको बुलाया भी गया था और उनको जाना चाहिए था। अब ये वी हैव टू वेट एंड सी कि ये जो नया इन्होंने एक पोस्चर अपनाया है और फिर जिस तरह की आपने देखा गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने की है ड्यूरिंग इनका जो वो
मार्च था,
मिशन था उसमें, मतलब बेसिकली असल में देखिए अवाम भी उसी तरह की है ना, वो सब समझते हैं कि अवाम इतनी बेवकूफ है कि उनको हम अपना एक मौका फेर दें कि जी हमारे से बड़ी ज्यादती हुई है। हमें होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब एक नया अपना, बल्कि आकर ये बात करते हैं कि देखिए ये इतनी तोड़ फोड़ बार बार हो रही है तो लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट द वे आउट. लेकिन उन्होंने उसके बिल्कुल बरस जाकर एक ऐसा स्टैंड अपनाया है, क्योंकि असल में ना इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को बादशाह समझते हैं.
लेकिन दुर्दाना एक बात है, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुझे पता है कि अगर मैं ये कुछ ना करूं तो भी मेरे साथ क्या होना है. अब खुल के नहीं कहते, दानियाल अजीज साहब भी हमारे साथ थे, वो ये कहते हैं कि जाहिर है हमारे खिलाफ मुकदमा बहुत कमजोर है, लॉयर्स हमारे साथ हैं, फैसला जिस बुनियाद पे किया गया है वो बहुत कमजोर बुनियाद है. तो इसलिए वो ये खुल के तो नहीं कहते कि कौन एलिमेंट हैं जो उनके खिलाफ हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जैसे ये कोई साजिश है. नवाज शरीफ यहाँ भी कहते हैं कि मैं ना करूँ तो भी मेरे खिलाफ ही होना है, और मुबसरीन ये कहते हैं कि कम अज कम अगर वो पब्लिक सपोर्ट ले लेते हैं तो शायद नैब मुकदमात में उनको थोड़ी सी कंपनसेशन मिल जाए. तो उनके पास ऑप्शंस क्या है, अदरवाइज क्या वो सरेंडर करते जाएं और मामला तो फिर गिरफ्तारियों या सजाओं की तरफ जा सकता है.
देखिए गिरफ्तारी ये बेसिकली इट वाज अ क्रिमिनल केस. अगर आप किसी कोई अगर सही बात करें ना सर, तो इट वाज अ क्रिमिनल. और वो ताहिर कादिर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये तो शुक्र करें इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये तो पूरा पूरा गिरफ्तारी का केस था. और वो जो इमरान खान बार बार कहते थे अडियाला जेल, वो सही कह रहे थे. आप जाली दस्तावेजात आप चीजें दे रहे हैं, जाली तरीके से सारे आप काम कर रहे हैं. अभी तो इनको ये कोई शुक्र करें कि इनकी बचत हो गई है, कौम के सामने इनकी इज्जत रख दी है वो अकामा का एक छोटा सा इशू बनाकर, और ये इस मुंह के साथ अवाम के सामने गए हैं कि जी हम पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं है. अगर मैंने पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना है कि इन पर तो करप्शन का कोई चार्ज नहीं है तो क्यों निकाला.
हाँ, लेकिन वो चार्जेस हैं, लेकिन जिस बुनियाद पे फैसला या नहली है वो कहा जाता है कि उस फैसले की बुनियाद में ये एडमिट नहीं किया गया कि इन चार्जेस के ऊपर, इन करप्शन के चार्जेस के एविडेंस मिलने के ऊपर ये
फर्क. बात मेरा ख्याल नहीं है, अगर JIT की रिपोर्ट को पूरी तरह पढ़ा जाए वो अलग बात है. वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगाकर जिस तरह से निकाला गया है या निकालने से मुराद तो नहीं है.
देखिए जी, JIT की रिपोर्ट तो कम अज कम उसका रेफरेंस डिसीजन में तो इस रेफरेंस में नहीं बनेगा, क्योंकि उसको तो जाहिर वो ऑन नहीं करते, वो चैलेंज नहीं करते. फैसला तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का होता है और वो किस बुनियाद पर दे रहे हैं. इससे पहले कि हम जरा पॉलिटिक्स का दूसरा जाविया टच करें, मैं आपको बताता चलूं ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से बराह रास्त सुन रहे हैं आप मीडियम व्यूज 972 किलोहर्ट्ज़ पे, और इसके साथ साथ आप ये प्रोग्राम फेसबुक के ऊपर फेसबुक लाइव में विद पिक्चर तस्वीरी झलक के साथ ये प्रोग्राम आप फेसबुक के ऊपर भी बराह रास्त नशर हो रहा है. वहाँ पर सुनने के लिए और अपने कमेंट्स देने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/VOA Urdu. इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये प्रोग्राम आपको तस्वीरी झलकियों के साथ वहाँ पर नशर होता हुआ आप देख भी सकते हैं, वहां पे इसको सुन भी सकते हैं. इसी हमारा जो सियासत का सेगमेंट था उसका दूसरा हिस्सा था वहां पे कराची के अंदर मुतहदा कौमी मूवमेंट उसके मुख्तलिफ जो धड़े हैं उनके दरमियान इत्तेहाद या इत्तेफाक का इम्कान है. तीन नुकाती एक कॉन्फ्रेंस तलब की है मुतहदा कौमी पार्टी मुतहदा कौमी मूवमेंट ने, और उसने ना सिर्फ मुख्तलिफ धड़ों को बल्कि दीगर सियासी जमातों को भी दावत दी है, और आपस में ऐसे कलमात का तबादला हुआ है जिससे ये एक जेस्चर मिल रहा है कि ये मुख्तलिफ जो फरीक हैं मुख्तलिफ धड़े कम अज़ कम तीन बड़े धड़े हैं जो मुतहदा कौमी मूवमेंट के वो आपस में इत्तेफाक कर सकते हैं, इत्तेहाद कर सकते हैं. कराची की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, एनालिसिस के लिए दुर्दाना हमारे साथ हैं. दुर्दाना नजम साहबा और आमिर लतीफ़ साहब कराची से मौजूद हैं. आमिर साहब ज़रा आप कराची से हैं, सो इस डिवेलपमेंट को आप हमें इसको थोड़ा स्क्रीन कीजिएगा.
एक आइडियल सिचुएशन है जो कि इन तीनों धड़ों के लिए है. आपको और हम सबको पता है कि सिंध जो है वो एक दो लिसानी सूबा है, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 1970 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो सब लिसानी बुनियादों पे हुई है. अल्ताफ हुसैन के माइनस होने के बाद जिसको कि तकरीबन आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मुत्तफिका फैसला है कि ही will no longer be part of Pakistani politics.
सही.
और उसको पहली मरतबा जो है वो सबसे बड़ा धड़ा यानी जो MQM पाकिस्तान जिसको कहते हैं उसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये 1990 की दहाई नहीं है. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये नवाज शरीफ के लिए 1990 की दहाई नहीं है, ये अल्ताफ हुसैन के लिए भी वो दहाई नहीं है. तो उसके बाद जो है वो तीन पार्टियां आपके सामने मौजूद है जिनके दो के ऊपर वो एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट की छाप का भी इल्जाम है, जैसा मेरी मुराद PSP यानी मुस्तफ़ा कमाल पार्टी, मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी, और MQM हकीकी जो कि आफाक अहमद की पार्टी है. तो जो एक सोच डेवलप हो रही है मेरी मालूमात के मुताबिक वो ये है कि महाजिर वोट तकसीम ना हो. महाजिर वोट तकसीम होने का मतलब ये होगा कि कुछ सीटें MQM पाकिस्तान, कुछ सीटें MQM हकीकी और कुछ सीटें PSP के पास चली जाएंगी, और उसके बाद जो है वो जो एक बार्गेन पोजिशन होती है इकतदार में, जॉब्स में और रिसोर्स में हिस्सा लेने की महाजिर कौमियत की बुनियाद पे या महाजिर वोट की बुनियाद पे, वो कमजोर हो जाएगी। मैं ये देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये तीनों जमातें जो है वो एक किसी पॉइंट ऑफ कंसेंसस पे जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें जो इस वक्त एक हॉक किस्म का यानी खतन दरअसल आप सबने एक एंग्री आर्ग्यूमेंट है वो पीएसपी की तरफ से है। एमकेएम हकीकी और एमकेएम एक तरह से इस चीज पे अग्री हो चुके हैं कि महाजन तकसीम ना हो, तो मैं नहीं समझता कि आगे चल के कोई बहुत ज्यादा इतनी प्रॉब्लम पीएसपी भी करेगी जब एक कम्युनिटी प्रेशर, एक महाजन प्रेशरों का प्रेशर और खुद पीपल एक वो आएगा और जब इनको खुद भी अंदाजा होगा कि हम शायद एस्टेब्लिशमेंट की मदद से कुछ तो कर सकें लेकिन शायद वो सीटें नहीं जीत सकते, वो अवामी हिमायत हासिल नहीं कर सके जो वो, तो अल्टीमेटली चीज जो है वो एक यूनाइटेड महाजर वोट बैंक की तरफ जाती है।
ठीक है, वो उस तरफ जाएगी तो क्या उसमें अल्ताफ हुसैन साहब के लिए कोई दोबारा कोई इम्कान आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी ये ख्याल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट,
बताऊं कि ये यहाँ पे फीलिंग एक जनरल फीलिंग है और इस फीलिंग को देखें सबसे बड़ी बात ये है कि ये उस वक्त तक होता अगर यहाँ की जो लोकल यानी एमकेएम पाकिस्तान जो कि एमकेएम एक तरह से असल और बड़ी एमकेएम है, अगर वो इस चीज को अभी देखिए 22 अगस्त से पहले अल्ताफ हुसैन के सारे खिताबात पे भी पाबंदी थी और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से यही एटीट्यूड था, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान उनकी पुश्त पे खड़ी थी और वो मुसलसल एहतजाज कर रही थी कि हमारा कायद वही है और हमारे कायद को जो है वो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से नहीं रोक सकते। लेकिन 22 अगस्त के बाद बिल्कुल मामला उलट हो चुका है और आप जो उनके बंदे थे असल यानी आप डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, आमिर खान, यानी ये तो वो लोग जो इनको डाई हार्ड इनके आप समझिए कि सपोर्ट करने वाले उनके पहले दिन के साथी यानी फारूक सत्तार और अल्ताफ हुसैन तो एक तरह से एक ही थे पहले 70s में इन्होंने मिलकर लॉन्च की, तो जब उन्होंने अपने आप को इनसे दूर कर लिया है तो अब अल्ताफ हुसैन के लिए वापस आना इन लोगों के लिए भी फिर शायद इनकी अपनी बका खतरे में पड़ जाए, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया मुमकिनात का खेल ऐसे तो, लेकिन मेरी ज़ाती राय में अल्ताफ हुसैन हैज नो प्लेस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एनी मोर।
जी दुर्दाना नजम साहिबा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसके मुख्तलिफ धड़े इत्तेफाक कर सकते हैं का इस चीज़ को समझते हुए कि अगर वो मुत्तफिक नहीं होते हैं तो इसका फ़ायदा दीगर सियासी जमातें उठाएंगी और फिर वो जो महाजिर वोट है स्पेशली जो कौमियत की बुनियाद पे खड़ा है उससे वो इस्तेफादा नहीं कर सकेंगे।
जिस तरह से एमकेएम को मतलब तोड़ा गया या जिस तरह से एमकेएम खुद टूट गई जो भी हम कह रहे हैं उसके इतने सारे धड़े बन गए, अभी भी ऑब्वियसली ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि अल्ताफ हुसैन तो अच्छे वक्तों में वापस नहीं है, उन्हें अब क्या वापस आना था, उन पर बैन लगाया गया जो
नहीं वापस आने से मुराद ये था कि पार्टी का जैसे असर रसूख उसमें होना, पार्टी की क्यादत होना भले वो लंदन में बैठ के संभाले।
अब आई डोंट थिंक सो, देखिए अभी बहुत सारी बातें इस पे की जा रही हैं, कुछ लोग कुछ ये भी एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि ये सारे धड़े एक ही हैं और ऑन द फेस ऑफ इट ये शो किया जा रहा है कि भाई हम ऑब्वियसली हम अलग अलग हैं और अल्ताफ हुसैन को जो है वो मतलब खाते से नहीं लाते वगैरह वगैरह, लेकिन ठीक है जहां तक मुस्तफा कमाल की पार्टी की बात है पाक सर जमीन जो पार्टी है वहां तक तो कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी इनके जो धड़े बन गए हैं उसके बारे में हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं अभी भी कह सकते कि उनका पता नहीं लंदन वाले जो एमक्यूएम है उनके साथ लिंक है या नहीं है, लेकिन अब देखा जाए तो अभी भी अगर आप ऑन ग्राउंड जाके कराची में देखें तो वहाँ अभी भी वही पॉलिटिक्स हो रही है जो पहले हो रही थी, अभी भी एमक्यूएम जो है वो अब टफ वॉर जो है उस पर ज्यादा उनका मतलब इंहिसार है और बहुत सारे फंड्स अभी भी उनको रिलीज हुए हैं एज ए मेयर जो उनको उनकी जो उनके पास मेयरशिप है, लेकिन उसको भी वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस तरह से जो उनसे उम्मीद की जा रही है। ऑब्वियसली अगर तो देखें कराची की पॉलिटिक्स जो है वो टोट इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पंजाब पॉलिटिक्स, उनका बिल्कुल कोई एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना नहीं है और कराची में ये जो एमसीएम का वोट है खासतौर से जो 5 मेजर सिटीज हैं सिंध की वो वोट अभी हमने देखा जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें दे हैव कम आउट वेरी मतलब सक्सेसफुल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारी दूसरी पार्टीज ने उनको मलाइन करने की कोशिश की, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एमसीएम ने वो 22 अगस्त का वाकया भी हुआ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारी और चीजें जबकि पता चल गया कि एमसीएम की कमर तोड़ दी गई है और दिन रात एमसीएम को मलाइन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप
देखिए
वो इंटैक्ट है और यू नेवर नो कि एट द एंड ऑफ द डे जो है वो जब इलेक्शंस होंगे तो ये एनक्रीम जो है माइक अगेंस्ट सर्जिकल के साथ ये पहले भी ऐसा हुआ है, बेबी के दौर में भी ऐसा हुआ था।
दुर्दाना हमारे साथ रहेगा, मुझे इस सेगमेंट को खत्म करना है, आप हमारे साथ रहेगा, जरा वो कला की बात करते हैं लाहौर के अंदर एक बार फिर, वो कला जो है वो बड़े पुरतशद्दद नजर आए। چند سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، عامر لطیف صاحب آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا، ہمارے ساتھ آپ موجود رہے۔ ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ۔ پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ خط آپ کے۔ وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسور امام، اور یہ پروگرام آپ میڈیا ویوز 972 کلو ہرٹز پہ سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر براہ راست سن بھی سکتے ہیں اور تصویری جھلکیوں کے ساتھ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایڈریس ہے www.facebook.com/voa-urdu۔ اس کے اوپر ہمارے ساتھ کافی لوگ وہاں پہ موجود ہیں، عبد القیوم راجا وہ کمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں پہ کمنٹس آپ نے دے رہی ہیں فہد خان، اور کافی احباب ہیں وہاں پہ۔ لٹریٹ فضل کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، وہ ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں، اور بھی کافی احباب ہیں جنہوں نے اس پہ لائک کیا ہے اسٹریم کو، تمام مہمان ان کا شکریہ جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ موجود ہیں۔ پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ، اس میں ہم بات کریں گے ایک بار پھر پاکستان کی وہ کلا برادری جن کے اوپر پچھلے کچھ برسوں میں خاص طور پہ یہ الزام آتا رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کا کام قانون کی پابندی ہے اور دوسروں کو قانون کا پابند بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ خود قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جب اس کی گرفت میں وہ خود آتے ہیں تو اس کے اوپر جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بالکل قانون کے ضمن یا اس کے دائرے یا اس کے دھارے میں نہیں آتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کا ایک کیس تھا، ملتان بار ایسوسی ایشن کے صدر شیرزما قریشی کی گرفتاری کا حکم دیے جانے پر پنجاب کی صوبائی دارالحکومت لاہور میں وکلا نے بہت بڑا احتجاج کیا، توڑ پھوڑ کی ہے، اور عدالتی فیصلے کے بعد لاہور کے مال روڈ پر واقع لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بلاک کا گیٹ توڑ ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھ عمارت پہ پتھراؤ بھی کیا۔ مشتعل ہیں وکلا اور ان کو منتشر کرنے کے لیے جو مقامی پولیس ہے اس کو واٹر کینن یعنی پانی کی توپیں اور آنسو گیس تک استعمال کرنا پڑ رہی ہے۔ ایسی کیا بات ہے کہ وکلا نہ صرف آپس میں لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں، ججوں پہ بھی حملوں کے واقعات سامنے آتے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے ساتھ بھی ان کی ہاتھا پائی، یہاں تک کہ بہت پرتشدد واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ سو ایسی کیا کہنا چاہیے کہ چیز ہے جو وکلا کو اس حد تک منتشر کرتی ہے کہ ان حالات میں جب خاص طور پہ میاں نواز شریف کے خلاف ایک فیصلہ آیا عدالت کا، اور اس کے بعد جو سیکوینس آف انسیڈنٹس ہے اس کے بعد یہ تاثر مل رہا ہے کہ بینچ اور بار کے اندر کافی اختلافات جنم لے چکے ہیں۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں دردانہ نجم صاحبہ، ہم نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں یاسین آزاد صاحب، پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن درمیان میں ٹیلی ویژن کو ایک انہوں نے ٹائم دے رکھا تھا، فاروق اسنا صاحب بھی موسٹ پروبیبلی ہمارے ساتھ ہوں گے، ممتاز تجزیہ کار ہیں، دردانہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پہلے ذرا یاسین آزاد صاحب آپ فرمائیے گا۔ جی، ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں دردانہ نجم صاحبہ۔ دردانہ آپ ہمیں بتائیے گا وکلا کا کیا ایشو ہے، اور اس حد تک ایک عدالت کا فیصلہ آیا ہے جس میں گرفتاری کا حکم ہے اور معاملہ توڑ پھوڑ تک پہنچ گیا ہے۔
جی دیکھیں، یہ سیدھا اب یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں، انہوں نے بہت دفعہ توڑ پھوڑ کی، بہت دفعہ اس قسم کا کیوس پیدا کیا، لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کی کوالٹی، یہ دس از ناٹ کوالٹی لائرز نہیں ہے۔ اصل میں بات اس پہ کرنی چاہیے کہ یہ کس قسم کے لائرز جو ہیں جو ہم نے پیدا کیے، کس قسم کی ان کو ایجوکیشن دی گئی، یہ سب اسی کا پیداوار ہے۔ جب ہماری حکومتیں کسی چیز کو مانیٹر نہیں کرتی، یہ وہی لوگ ہیں، وہی لائرز ہیں جن کے درمیان، آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ لا کی ایجوکیشن واز انریگولیٹڈ، پانچ پانچ چھ چھ مرلے، دس مرلے، جس کا جہاں دل کرتا تھا وہ لا اسکول کھول لیتا تھا، لا کالج کھولنے کی اجازت تھی، کوئی ریگولیشن نہیں تھی کہ آپ ان کالجز میں، ان اسکولس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کوئی چیک اینڈ کوئی بیلنس نہیں تھا۔ جس کا جس وقت دل کرتا تھا لا کی ایجوکیشن میں داخلہ لے لیتا تھا، کوئی اب تو ایج کی انہوں نے ایک پابندی لگائی ہے کہ جی آپ 24 سال کے अगर हैं तो यू कैन टेक एडमिशन वगैरह वगैरह, अब आकर उनको समझ आइए कि ये हमने क्या कचरा पैदा कर लिया है अपने दरमियान। और यहाँ तक कि अगर आप लॉयर्स से पूछें वो खुद आपको बताएंगे कि जाली डिग्रियां बांटी गई, फिर उसके बाद फॉरेन अलायंसेस तय किए गए मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ, जिनकी जो झूठी डिग्रियां जाली डिग्रियां उसके उनको दी गई इन लॉयर्स को। तो ये जो क्वालिटी हम देख रहे हैं, जो लाखों की हजारों की तादाद में लॉयर्स एक वक्त था कि जो बने या पैदा हुए,
देखें दुर्जाना ये बात आपकी दुरुस्त होगी, जो जहाँ से
अच्छा लॉयर होगा अगर आप यू कम टू थिंक ऑफ इट, वो बाहर की पॉलिटिक्स से अपने आप को हमेशा दूर रखेगा। क्योंकि देख अब अगर यही बाहर की पॉलिटिक्स जो है वो इट इज नॉट डन बिकॉज टू स्ट्रेंथन लॉ, टू स्ट्रेंथन रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, इट इज बेसिकली डन अपने पर्सनल जो मुफादात हैं उनको आगे लेकर जाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये जो अब हम देख रहे हैं, ये जो सारा अब आप सोच सकते हैं जो लॉ के जो कानून के खुद महाफिज हैं वो एक उनके ऊपर कंटेम्प्ट कर चुके केस बन गया है, उसको बजाय इसके कि वो कहें कि ओके वी आर हियर आप हम पेश होते हैं, उन्होंने उल्टा जो है वो जाकर पहले तो धावा बोला चीफ जस्टिस के ऑफिस पे लाहौर हाई कोर्ट में और आज आपके सामने जो कुछ उन्होंने किया। तो ये तो हमारी हुकूमतें जो है ये इसके खुद जिम्मेदार है, ये जो आज सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि पहले हम एक बुराई को बनने देते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं, और फिर जब हमें जब वो हमारे गले पे जाकर हमें हाथ डालती है तो हमें पता चलता है एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट इट। और जो लिया भी है पिछले साल हमने देखा किस तरह से लॉ की एजुकेशन को उन्होंने रिफॉर्म वगैरह किया। अभी भी मैं समझती हूँ कि हुकूमत को दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन, और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इनको होस्टेज नहीं बनाने देंगे लाहौर हाई कोर्ट को या जजेस को या इनकी इस तरह से बात नहीं मानेंगे, और इसी तरह ही करना चाहिए, वरना तो ये तो एक वतीरा बन गया है कि हर कोई कहता है कि जी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, एक इम्प्यूनिटी का कल्चर, एवरीबडी वॉन्ट्स अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी कि जी किसी को पकड़ा ही ना जाए, किसी पर इल्जाम ना लगाए, हुकूमत भी यही कर रही है और हर कोई
और शोबों की सतह के ऊपर अगर आप तंजीमों की सतह के ऊपर आप अपने आप को कानून से मावरा करेंगे तो किसके ऊपर इसका अमल दरामद होगा। डॉक्टर फारूक असनाद साहब आपका तजिया, वो कला के का काम है कानून की पासदारी, बल्कि जो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं उनको कटहरे में लाना, लेकिन वो खुद हाथापाई हत्या के हथियार उठाने तक वो खुद माइल नजर आते हैं। जी डॉक्टर फारूक असनाद साहब का नंबर जो है वो गालिबन मुनकता हो गया है या जी डॉक्टर फारूक असनाद साहब हमारे साथ आप एनालिसिस दीजिएगा क्या रीजन है और कैसे इन वकला को भले वो अगर उनके इंस्टीट्यूशन जैसे दुर्दाना कह रही थी अच्छे या बुरे हैं लेकिन जाहिर है वो बार का हिस्सा है, सो जब वो बार का हिस्सा बन जाते हैं तो कैसे वो बिहेव करें और उनको रिस्पॉन्सिबल लॉयर बनाने के लिए क्या करना होगा?
बिल्कुल आपने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, की वर्ड इस्तेमाल किया बार के मेंबर, असल में बात यह है कि जब आप बार के मेंबर बनते हैं तो आप एक डिसिप्लिन के नीचे आ जाते हैं, उनका कोड ऑफ वो लॉ है बाकायदा किस तरीके से आपने बिहेव करना है किस तरीके से नहीं करना। ये तो एक अलहदा बात है कि जब वो हुल्लड़बाजी करते हैं या अदालत के ऊपर हमला करते हैं तो वो फौजदारी मुकदमात तो बन ही जाते हैं, लेकिन बार का भी फर्ज है कि वो सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन ले इनके खिलाफ और इनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल किए जाए, और ताकि एक मिसाल कायम हो, इसलिए कि बार की भी इसमें बदनामी होती है। अगर मैं एक दो शख्स भी इसमें कर रहे हैं और उनको अगर सजा नहीं मिलती और खुली छुट्टी मिलती है तो फिर ये सारा का सारी जो बरादरी है वकला बरादरी उस पर वो बुरा असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, खास तौर पे बार के ऊपर जो के जिसके ये मेंबर हैं और जिसके सामने इन्होंने एक किस्म का हलफ भी उठाया होता है कि हम कवानीन की हिफाजत करेंगे, और जो जो कवानीन बार के भी अपने जो लॉज हैं या उनके रूल्स हैं उसके ऊपर भी हम चलेंगे।
यकीन करें डॉक्टर साहब आप अभी अमेरिका से होके गए हैं अजराए तफन्नन, ये जो बाहर से पाकिस्तान के बाहर से हमें जो तस्वीर आती हैं उर्दू वाले बार की वो यहाँ हमें अंग्रेजी वाले बार से भी वो पिक्चर्स नजर नहीं आती हैं। सो वाकई इस पर बहुत संजीदगी से गौर करना होगा। दुर्दाना भी अच्छा शुक्रिया आपका आप हमारे साथ मौजूद रहें। डॉक्टर साहब आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में भी आप हमें ज्वाइन करें। तो चाहे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले से बात करते हैं।
पाकिस्तान कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे
आप
तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के बीच
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज़ पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जा रहा हूँ मैं, आपका खैर मकदम। मैं हूँ सदसन और प्रोड्यूसर एसफर इमाम, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नई अफगान पॉलिसी। आज उसका ऐलान मुतवक्के है, किसी भी वक्त आज वो इसका ऐलान कर सकते हैं, आज रात को अमरीका के वक्त के मुताबिक। और इसमें जो तवक्कुआत जाहिर की जा रही है, जो एनालिसिस मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी, ख्याल ये किया जा रहा है कि जनूबी एशिया से मुतालिक जब वो अपनी नई हिकमत अमली का ऐलान करेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खास तौर पे जो शोरेज़दा इलाके हैं उसके बारे में एक वाज़े पॉलिसी आ सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है कि तालिबान मिलिटेंसी को कमज़ोर करने के लिए और फिर उनको मुज़ाकरात पे लाने के लिए फ़ौजियों की तादाद में इजाफा हो, पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे शिकवा है या गिला है कि वहाँ पे हकानी नेटवर्क जैसे कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, उसके बारे में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन ये महज तवक्कुआत हैं जो मीडिया के अंदर जिनका इजहार हो रहा है। आज ये सवाल वहाँ पे डायरेक्टर जनरल ISPR के जो हैं उनके साथ भी किया गया कि पाकिस्तान के बारे में कोई सख्त पॉलिसी आ सकती है, तो उनका ये कहना था कि जब वो पॉलिसी आएगी तो फॉरेन ऑफिस उसको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर हकानी नेटवर्क या कोई भी और गैर मुल्की नेटवर्क मौजूद नहीं है, हमने अमरीका के जो यहाँ पर दौरा करने वाला वफ था उसको उन इलाकों में जाके बजात खुद ऑन सीन वहाँ पे उनको विजिट कराया है, उनका दौरा कराया है और उनको तसल्ली दी है। लेकिन इसके बावजूद अगर चीज़ें आती हैं तो फिर फॉरेन ऑफिस प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ये है वो बैकग्राउंड। डॉक्टर फारूक असनाद साहब हमारे साथ हैं और अफगानिस्तान से हमें रहीम उल्लाह सुमदर साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर साफी हैं, तजियाकार हैं। डॉक्टर फारूक असनाद साहब, क्या पॉलिसी एक दो फीचर्स तो उसके मैंने अर्ज़ किए हैं कि जो यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं कि शायद उसका ऐलान हो, लेकिन तवक्को ये है कि बहरहाल ये एक वे फॉरवर्ड होगा टूवर्ड्स अफगानिस्तान, क्या हो सकता है?
देखिए, आपने जैसे कहा कि ज्यादा इम्कान तो यही है कि ट्रुप्स की तादाद बढ़ाई जाए, इसलिए दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें वो वैसे वो ऑप्शन तो अब नहीं रहा, वो ये था कि अमेरिका विड्रॉ कर जाता वहां से, लेकिन उसके उसमें ज्यादा खतरात ये हैं कि जब वो विड्रॉ करेगा तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा होती है जिसमें फिर से मिलिटेंट ग्रुप जो है वो उभर सकते हैं। उसकी एक ही चॉइस रह गई है, वो चॉइस ये है कि आप ट्रुप्स की तादाद बढ़ाइए जैसे मैं बचा कहा, और उसके पीछे सोच ये है कि तालिबान को किसी हद तक जेर कर लें और फिर उसके बाद नेगोशिएशन की मेज पर बैठे। असल में मसला ये है कि चाहे फौजें बढ़ाई जाए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए, पाकिस्तान ने जो मैक्सिमम करना था जो वो उन्होंने कर दिया, इससे ज्यादा पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाके अमेरिकी फौजों की भी सिक्योरिटी की जमानत दे, ये मुमकिन ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को सही करना और उनके जो माशरा है अफगानिस्तान का, उनके जो अदारे हैं उसको मजबूत करना, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं ली गई। ना ही यहाँ पे नेशनल फौज बनाई गई है कौमी, ना ही कौमी पुलिस है, ना ही उनके जो दूसरे अदारे हैं चाहे जुडिशरी हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो वॉर लॉर्ड के सपोर्ट कर दिया गया है सब कुछ, और उसमें ज्यादातर हम उस बेक और ताजिक देखते हैं, वॉर लॉर्ड उन्होंने अपने अपने जगह संभाली हुई हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल भी इल्जाम लगाए जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी मुलव्वज़ रहते हैं जिसमें दोस्तम हैं और दूसरे लोग हैं।
इसलिए
जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत सही नहीं होगी और वो तावन नहीं करेगी तो सिर्फ अमेरिका की फौज आकर वो सब कुछ नहीं कर सकती कि अफगानिस्तान में इस किस्म का अमन आए जिसमें जो तमाम एथनिक ग्रुप्स हैं 40% पश्तून हैं जो कि तालिबान हैं उनको परे रखकर तो अमन नहीं लाया जा सकता। अमन तो तभी लाया जा सकता है जब तमाम एथनिक ग्रुप्स को आप साथ मिलाकर उसको चलें और इस किस्म का कोई फार्मूला दें जिसमें हर एथनिक ग्रुप ये समझे कि हम हिस्सेदार हैं हुकूमत साजी में। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ट्रंप साहब जो भी कहें फौजें बढ़ाएं, लेकिन जब तक अफगानिस्तान के अंदर के जो हालात हैं यानी उनके इंतजामी मामलात हैं जब तक वो सही नहीं होंगे, जब तक वहाँ ये सोच डेवलप नहीं होगी कि हमने अभी अपनी पावर को और अपने जो अख्तियारात हैं को कंसीड करना है।
डॉक्टर साहब, एक और बात है, यहाँ पे हमारे एम्बेसडर भी कहते रहे, पाकिस्तान ऑफिशियली भी ये कहता रहा है, पाकिस्तान का ये ख्याल है कि चूंकि अफगानिस्तान में कोई बहुत फैसला कुन कामयाबी हासिल नहीं हुई अमरीका को, सो वो पाकिस्तान को ब्लेम कर सकता है कि पाकिस्तान की वजह से ये कामयाबी मुमकिन नहीं हो पाई क्योंकि ये यहाँ से मिलिटेंट्स जाते हैं। इस रेफरेंस में बताइएगा पाकिस्तान पे क्या दबाव आ सकता है या किस तरह की कोई सख्त मैसेज या जुबान वो पाकिस्तान से मुतालिक इस्तेमाल हो सकती है?
जी उसमें जी मैक्सिमम तो यही कर सकते हैं फौजी इमदाद बंद कर दी जाए, लेकिन उससे ये होगा कि पाकिस्तान पहले ही काफी झुकाव पाकिस्तान का हो चुका है चीन की तरफ। पुराने ताल्लुकात तो हैं लेकिन अब स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में वो तब्दील हो रहे हैं। उसके बाद रूस जो है उसने भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है, पहले वो नहीं लेते थे लेकिन अफगानिस्तान के जो पीस प्रोसेस है उसमें दिलचस्पी वो ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बहुत नई डेवलपमेंट है, और चीन भी पीस प्रोसेस में दिलचस्पी ले रहा है। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान को पुश करेगा तो पाकिस्तान जो पहले ही माइल है चीन की तरफ और रूस की तरफ, तो वो और ज्यादा उनकी तरफ जाएगा और एक ऐसा स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बन जाएगा जो अमेरिका के मफाद में कतन नहीं होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो बेहतर पॉलिसी शायद अमेरिका की यही हो कि वो पाकिस्तान को साथ लेके चले और मुजाकरात की कोशिश करें कि तालिबान के जो भी ग्रुप मानते हैं उनकी बात और यह सुनते हैं उनको मुजाकरात की मेज के ऊपर लाएं और बातचीत के जरिए इस सारे मसले का हल निकालें। सिर्फ प्रेशर टैक्टिक से कुछ नहीं होगा बल्कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर फारूक असना साहब, आप हमारे साथ रहे, आपका बेहद शुक्रिया। कामरान बुखारी ने और रहीमुल्ला सुमंदर ने हमें काबुल से ज्वाइन करना था लेकिन टेलीफोन लाइन हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए इस वक्त, सो इस सेगमेंट को हम यहाँ पे खत्म करेंगे और चलेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब लेकिन इस ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जा रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम। ये प्रोग्राम आप मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पे बराए रास्त सुन रहे हैं और इसके साथ साथ facebook.com/voaurdu यहाँ पे भी ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है तस्वीरी झलकियों के साथ, यहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा स्पोर्ट्स, क्रिकेट। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के बजाय कुछ इम्कान नजर आने लगे हैं। आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में और उन्होंने बताया यह है कि ना सिर्फ ये कि आइंदा महीने सेप्टेम्बर के अंदर वर्ल्ड इलेवन पाकिस्तान में आएगी बल्कि वो ये कहते हैं कि नवम्बर में वेस्ट इंडीज की टीम भी पाकिस्तान आएगी और 3 T20 मैचेस खेलेगी। श्रीलंका का दौरा भी पाइपलाइन में और श्रीलंका इसके ऊपर असूली इतफाक कर चुका है। सो 2017 और उसके इख्तिताम तक बाकायदा इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर बहाल हो जाएगी, ये एक अहम सवाल है और इस पर बहुत सारे क्रिकेट पैंडिट्स वो अपना तजिया दे रहे हैं, लिख भी रहे हैं। हमारे साथ हैं उमेर अलवी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मोहसिन हदीद 92 के साथ न्यूज़पेपर के साथ वाबस्ता हैं, स्पोर्ट्स राइटर हैं, बाकी इशूज़ पर भी लिखते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उमेर, क्या आपकी ओपिनियन है ये जो नजम सेठी के चेयरमैन बनने के बाद, बहरहाल वो एक्टिव तो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बहाली के लिए, लेकिन मैं एक ही सवाल में दूसरा एंगल भी रखना चाहता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये अभी ये एफर्ट्स होनी नहीं चाहिए, टीमें पाकिस्तान ना आए जब तक कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता, क्योंकि कोई एक नाखुशगवार वाकया क्रिकेट को और पीछे ले जाएगा।
ये बिल्कुल बात, देखें दोनों, अगर आप दोनों तरफ का वर्जन देखें तो दोनों बातें सही हैं, एक तो आनी भी चाहिए और नहीं भी आनी चाहिए। आनी इसलिए चाहिए कि देखिए काफी टाइम हो गया और हमारे पास अभी कुछ है भी नहीं, हमारा कैलेंडर फारिग पड़ा हुआ है इस वक्त। लेकिन जो नहीं आने वाली चीज है वो ये कि देखिए सिक्योरिटी लैप्स, तो आप उसको कितना करेंगे। आप जिम्बाब्वे की टीम जब आई थी वो जिम्बाब्वे वॉज नॉट दैट ए प्लस लेवल की टीम, लेकिन उसमें भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या पूरे मुल्क में सिर्फ एक शहर है, मतलब इतने सारे शहर पड़े हुए हैं, आप कहीं और करें। मुल्तान का तो स्टेडियम शहर से बाहर है और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, अच्छा है, वहाँ 5-star होटल भी है। कराची में क्या मसला है, इस्लामाबाद पिंडी में क्या मसला है, इनको इतने सारे स्टेडियम, इनकी सारी कोर्ट जो है वो लाहौर पे क्यों अटकती है जबकि 2009 वाला इंसिडेंट लाहौर में हुआ था।
सही, اور نہیں اب وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ بھی ہے وہاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی ارینجمنٹس کے لیے وہاں پہ جائیں گے، وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوگی، رینجرز کے آفیشیل سے ملاقات ہوگی، کراچی اس میں ہے، اور ایون پی ایس ایل کا جو فائنل کرانے کا اعلان کیا گیا وہ بھی کراچی کے لیے ہے. محسن آپ کی رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں، کتنے امکانات ہیں ٹیمیں آ جائیں گی، اور آپ کا تجزیہ کیا ہے، کیا آنی چاہیے؟
سر اصولاً تو ٹیمز آنی چاہیے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت بہت اس حساب سے کہنا چاہیے کہ ترسا ہوا ہے. عوام بہت مطمئنی تھی اور بڑے لمبے عرصے سے خاص طور پہ پی ایس ایل فائنل میں جس طرح کا جنون ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد تو ضرور یہ بات طے ہو چکی تھی کہ عوام میں اس کی چاہت بہت زیادہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح مہر بھائی بات کر رہے تھے، کیونکہ ایک بھی انسیڈنٹ ہم کو واقعی پیچھے بہت دھکیل سکتا ہے. بہرحال ابھی 26 یا 27 اگست کو وہ ٹیم آئے گی، سیکورٹی ٹیم، اس کی رپورٹ ہونی ہے، اس کے بعد ورلڈ 11 کا ٹور ہونا ہے. یہ اتنا سارا کچھ آسان، اصل مسئلہ ایک اور بھی ہے اس میں
صحیح.
پاکستان میں سیاست اور کھیل یہ ساری چیزیں آپس میں بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 2009 کا واقعہ ہوا تھا تب بھی اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہوا تھا وہ سیاست ہی اس میں سب سے بڑا ایشو. تو لاہور میں یا پنجاب میں اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا سیکورٹی لیپس ہوا اور وہ سارا مسئلہ ہو گیا اور ہم اتنا پیچھے چلے گئے. آپ کو یہ بھی ذہن میں ہوگا کہ 17 سپٹمبر کو لاہور میں بہت بڑا مارکا لڑا جا رہا ہے الیکشن کا، مطلب این اے 120 کا، اور 15 کو ممکنہ طور پہ ہم آخری میچ کھیلنے جا رہے ہیں. تو 15 تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمپین کی وہ لاسٹ ڈیٹ ہوگی، ظاہر ہے ایک دن پہلے وہ بند ہونی ہے کمپین،
یعنی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے. سو اس ریفرنس میں تو پھر محسن عمیر صحیح کہہ رہے ہیں، اس ریفرنس میں تو محسن عمیر صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر کراچی میں آپ شفٹ کر دیں، کسی اور شہر میں کر دیں جہاں پہ ظاہر ہے کرکٹ لور تو ہر جگہ موجود ہے.
کراچی یا کسی اور جگہ جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری ٹیمز اس پہ راضی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. لاہور کی بہرحال ایک اچھی باہر ایک اچھی مطلب جاتی ہے، اس کی شناخت ایک اچھی بنی ہوئی ہے، لوگ لاہور کے بارے میں ایک اچھا تاثر رکھتے ہیں.
لیکن یہ اس کے باوجود کہ وہ اٹیک بھی لاہور میں ہوا تھا،
کسی کے لیے بھی
اس کے باوجود کہ وہ اٹیک بھی لاہور میں. عمیر ویسے سری لنکن ٹیم کو کتنا کریڈٹ دیں گے، کیونکہ یہ وہ ٹیم ہے جو براہ راست دہشت گردی کا شکار ہوئی اور وہی پاکستان کے اندر باضابطہ سیریز کے لیے وہ تیار بھی نظر آ رہی ہے.
بالکل دیکھیے سری لنکا نے یہ پاکستان نے بہت سپورٹ کی ہے اور سری لنکا ہی وہ ملک ہے جو ہمیں سپورٹ کرے گا. آپ دیکھیے جو لاہور والا انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے پہلے جو میچ ہوا تھا وہ کراچی میں ہوا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کراچی میں اس وقت جو تھا سگنل فری کوریڈور کر دیا گیا تھا شرح فیصل کو، کہ وہ اپنے ہوٹل سے اور اسٹیڈیم میں ان کو ہارڈلی 5 سے 10 منٹ لگے تھے آنے میں. تو کراچی سیف ہے اور کراچی میں تو یہ تو کوئی غلطی نہیں ہے بھائی. آپ ہمیشہ کوشش کر کے مطلب لاہور کا بھی صحیح کہہ رہے ہیں محسن نا کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو بھائی پھر آپ کی گوٹ کیوں پھنسی ہوئی ہے لاہور پہ؟
ٹھیک ہے
ملتان وہی ہے نا، ملتان کا تو اسٹیڈیم بھی شہر سے باہر ہے، اس سے زیادہ کیا سیف چیز ہو سکتی ہے؟
ایگزیکٹلی. اچھا اب میرے پاس 1.5 سے 2 منٹ ہے، 30 سے 40 سیکنڈ دیجیے گا. نجم سیٹھی صاحب فائنلی کرکٹ بورڈ کے الیکٹڈ چیئرمین بن گئے ہیں، کیا توقعات ان سے آپ رکھتے ہیں کرکٹ کی بہتری کے لیے بھی، کرکٹ کی آمد کے لیے بھی، اور کتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں کرکٹ کے اعتبار سے خاص طور پہ؟
دیکھیے پہلے بھی تو رہ چکے ہیں، اس وقت پھر ان بیچارے نے کوشش تو کی تھی لیکن اتنا آسان نہیں ہے. مگر اللہ کرے کہ اس دفعہ جو ان کی ٹیم ہو تھوڑے سے سنسیبل لوگ بھی ہوں ان کے ساتھ جو ان کو مشورہ بھی صحیح دیں، ورنہ ان کا ایک پرابلم ہے وہ سب کی سنتے ہیں. اب ہر آدمی کی نہیں سننی چاہیے، جو سنسیبل آدمی اس کی سنیں، جو سنسیبل نہیں اس سے بات ہی نہ کریں نا.
محسن
اللہ کرے، میں تو میری تو دعائیں ان کے ساتھ.
محسن آپ کی کیا، نجم سیٹھی صاحب کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اگرچہ یہ ان کا فیلڈ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ایک اگین ایڈمنسٹریشن کے اپنے اسکلز ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی اپلائی ہو سکتے ہیں. کیسا چیئرمین آپ ان کو دیکھتے ہیں یا ان کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ جا رہے ہوں گے تو کیا کچھ ہوگا ان کے کریڈٹ پہ؟
سر سچی بات تو یہ ہے کہ سیٹھی صاحب کے جو 2013 کے الیکشن کے حوالے سے جو ان کو نوازنے کی باتیں جا رہی تھی اس کے حساب سے تو ہم سارے لوگ ان کے کافی
کریٹک
رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے محنت کی ہے اور ان کی محنت کے ثمرات اب نظر آنا شروع ہو گئے. امبیسیڈر تو بہت اچھے ہیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. بات کرنا، بات سمجھانا، بات منوانا اور اپنے آپ کو مطلب کنوینس کرنا وہ جانتے ہیں اور یہ بات اب وہ ثابت بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک بات سر دیکھنے والی اس میں بہت اہم ہے، پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انڈیا کا ہے. پاکستان میں صحیح معنوں میں انٹرنیشنل کرکٹ تب ہی بحال ہو پائے گی جب انڈین کرکٹ ٹیم چاہے ایک بھی T20 میچ کے لیے پاکستان آ جائے.
وہ انفلوئنس بھی ویسے وہ بگ تھری والے مائنس ہونے کی وجہ سے
بگ تھری ذہن میں رکھنے والی ہے،
بگ تھری کا جو ہے وہ کام ہونے کی وجہ سے وہ انفلوئنس بھی کم ہوا ہے. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. محسن ادید، عمیر علوی، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، آپ ہمارے ساتھ ہیں. پروڈیوسر تیسور امام، اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔